अभी शाब्द बोध का प्रसंग चल रहा है। हमने कहा है कि शाब्द बोध में विशेष विशेषण भाव का विचार किया जाता है कि दो पदार्थ है तो कौन सा पदार्थ जो है उसमें विशेष होगा और कौन विशेषण बनेगा। तो मैंने भूमिका के क्रम में बताया था कि इस व्याकरण भूषण सार ग्रंथ में मीमांसक, नैयायिक और व्याकरण इन तीनों के सिद्धांतों की चर्चा होगी और फाइनली जो है व्याकरण के सिद्धांत को निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो तिंग का क्या अर्थ होता है और धातु का क्या अर्थ होता है, इस सेंस में मीमांसक के मत से व्याकरण का मत जो है अलग है। मीमांसक केवल जो है धातु का अर्थ जो है फल मानते हैं और हम माने व्याकरण जो है धातु का अर्थ फल और व्यापार दोनों मानते हैं। एक ये हो गया मीमांसक से अंतर। दूसरा अंतर हुआ कि मीमांसक तिंग का अर्थ व्यापार मानते हैं और व्याकरण जो है तिंग का अर्थ कर्तृ कर्म संख्या काला है, तो कर्ता कर्म संख्या काल ये चार अर्थ मानते हैं। इसमें से दो महत्वपूर्ण है, कर्ता और कर्म अर्थ। लेकिन शाब्द बोध में, शाब्द बोध का मतलब बताया था पिछले पाठ में कि वाक्यार्थ बोध, कि वाक्य से होने वाला जो बोध है उस बोध में सर्वाधिक प्रधान कौन होता है, लास्ट विशेष्य कौन होता है फाइनली, तो उसमें जो है मीमांसक के साथ विरोध नहीं है। मीमांसक भी जो है भावना मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं। भावना माने व्यापार ही होता है, तो भावना मुख्य विशेषक शाब्द बोध मीमांसक के मत में है और व्याकरण के मत में भी यही है, केवल वो भावना शब्द से बोलते हैं और हम व्यापार शब्द से बोलते हैं। तो व्याकरणों का कहना है कि व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है और मीमांसकों का कहना है कि भावना मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। तो मुख्य विशेष्य के संबंध में ध्यान रहे, मैं केवल विशेष्य नहीं कह रहा हूँ, मुख्य विशेष्य कह रहा हूँ। मुख्य विशेष्य क्या होगा, जब मुख्य विशेष्य भी होगा और अमुख्य विशेष्य भी होगा, उस स्थिति में मुख्य विशेष्य की यहाँ बात की जा रही है। इसका मतलब हुआ कि वाक्यार्थ बोध में कई विशेष्य होते हैं लेकिन उनमें से मुख्य विशेष्य जो होगा, मुख्य तो एक ही होगा, वह मुख्य विशेष्य कौन है, इस संबंध में मीमांसक और व्याकरण का मत जो है वह समान है। मीमांसक भी मुख्य विशेष्य जो है शाब्द बोध में मानते हैं भावना को और व्याकरण भी मुख्य विशेष्य मानते हैं शाब्द बोध में व्यापार को। इस तरह से परीक्षा में अगर पूछे कि मीमांसक मत में कैसा शाब्द बोध होता है तो हम लिखेंगे कि मीमांसक मते भावना मुख्य विशेष्यक शाब्द बोध भवति, और पूछे कि व्याकरण मत में कैसा होता है, लिखेंगे व्यापार मुख्य विशेष्यक शाब्द बोध भवति, माने व्यापार ही मुख्य विशेष्य होता है शाब्द बोध में। किंतु मुख्य विशेष्य के संबंध में नैयायिकों के साथ जो है ना विरोध है। नैयायिक लोग मुख्य विशेष्य मानते हैं शाब्द बोध में प्रथमांतार्थ को। प्रथमांत अर्थ, प्रथमांत पद का जो अर्थ होगा वही प्रधान होगा। अब जैसे देवदत्तः तंडुलम पचति, इसमें प्रथमांत कौन है, प्रथमा विभक्ति किसमें लगी हुई है, तो देवदत्तः में प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमांत हो गया देवदत्तः। और प्रथमांत का अर्थ क्या हुआ, देवदत्त हुआ, देवदत्तः का अर्थ तो देवदत्त ही होगा, तो देवदत्तः तंडुलम पचति में मुख्य विशेष्य जो है प्रथमांतार्थ होगा, माने देवदत्त होगा, ये नैयायिकों का कहना है। और व्याकरण और मीमांसक का कहना है कि देवदत्तः तंडुलम पचति, इस वाक्य में पच धातु का जो अर्थ है व्यापार, वह व्यापार ही मुख्य विशेष्य है, बाकी जो भी विशेष्य होंगे वो गौण विशेष्य होंगे। तो इस तरह से अब मुख्य विशेष्य की चर्चा आपके ग्रंथ में शुरू होने वाली है, और जब मुख्य विशेष्य की चर्चा शुरू होगी तो नैयायिकों के साथ व्याकरणों का संवाद होगा। न्यायिकों के मत की प्रस्तुति होगी और उसका खंडन होगा और वैयाकरणों के मत का समर्थन होगा। तो इस तरह से अब निष्कर्ष में आपको मैं बता दूं कि शाब्द बोध जो है तीन प्रकार का होता है। मीमांसक के मत में भावना मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। वैयाकरण के मत में व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। केवल अंतर इसमें है शब्द का, बात वही है, भावना और व्यापार एक ही चीज होती है। लेकिन न्यायिकों के मत में प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है, माने शाब्द बोध में हमेशा प्रथमांतार्थ ही मुख्य होता है। इस तरह से हमने अभी केवल सिद्धांत की बात की कि किस दर्शन के मत से या किस शास्त्र के मत से कौन जो है मुख्य विशेष होता है और शाब्द बोध में मुख्य विशेष कौन बनता है। चलिए, तो लास्ट में पिछले पाठ में बताया गया था कि एवं च तिंगर्थो विशेषणम एव भावनैव प्रधानम, माने इस तरह से तिंग का अर्थ जो है वह विशेषण ही होता है और भावना एव प्रधानम, भावना माने व्यापार, व्यापार ही जो है शाब्द बोध में प्रधान होता है, प्रधान होता है माने मुख्य विशेष होता है। इस तरह से हमने सिद्धांत को अब जाना। अब वैयाकरण ने क्या किया कि अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किया है कि व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोधि क्यों होता है। तो उसमें दिया कि यद्यपि प्रकृति प्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम् अन्यत्र दृष्टम्, ऐसा है कि सुबंत पद और तिंगंत पद दो तरह के पद होते हैं। तो सुबंत पद में प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है और प्रकृति का अर्थ जो है अप्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, सुबंत पद में प्रकृति का अर्थ अप्रधान और प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है, लेकिन तिंगंत पद में प्रत्यय का अर्थ अप्रधान होता है माने विशेषण होता है और प्रकृति जो है धातु उसका अर्थ प्रधान होता है। तो वही कह रहे हैं कि यद्यपि प्रकृति प्रत्ययार्थयो हो, माने प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ, इन दोनों में प्रत्यय अर्थस्यैव प्राधान्यम्, प्रत्यय अर्थ की ही प्रधानता होती है। कहाँ पर होती है? तो अन्यत्र दृष्टम, अन्यत्र माने तिंगंत पद को छोड़ करके सुबंत पद में ये देखा जाता है। अब जैसे अगर ये तो हमने विभक्ति की दृष्टि से बताया और प्रत्येक तिंगंत और सुबंत कह करके, अगर हम कृदंत का कहें कि कृदंत शब्द में क्या होता है, तो कृदंत में भी प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान होता है। तद्धितांत शब्द अगर कहें तो तद्धितांत में भी जो है प्रत्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। तो कृदंत में, तद्धितांत में, अच्छा ये दोनों जो है सुबंत होते हैं, कृदंत भी सुबंत रूप बनता है और तद्धितांत का भी सुबंत रूप बनता है, इसलिए मैंने सुबंत और तिंगंत से ही शुरू में बोला था। लेकिन सुबंत पद भी दो प्रकार का होता है, कृदंत और तद्धितांत। तो इन दोनों में ही प्रत्यय अर्थ प्रधान होता है और प्रकृति अर्थ जो है वह अप्रधान होता है, इसलिए कहा अन्यत्र दृष्टम, अन्यत्र माने सुबंत पद में ऐसा देखा जाता है। तथापि फिर भी तिंगंत में जो है ना वह व्यापार अर्थ ही जो है प्रधान होता है, माने प्रकृति जो धातु है उसका अर्थ ही प्रधान होता है। वही कहते हैं तथापि भाव प्रधानमाख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि इति निरुक्तात्। निरुक्त का नाम आपने सुना होगा, वेद के छह अंग होते हैं, वेदांग छह माना जाता है, उसमें एक निरुक्त नाम का वेदांग भी है जिसके प्रणेता हैं महर्षि यास्क। तो महर्षि यास्क ने जो निरुक्त ग्रंथ को लिखा है उसकी ये पंक्ति है, भाव प्रधान माख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। इसका क्या मतलब हुआ कि भाव प्रधानम माने भाव ही प्रधान होता है, भाव माने व्यापार, तो व्यापार ही प्रधान होता है। कहाँ पर? तो आख्यातम, आख्यात पद में। आख्यात पद का मतलब है तिंगंत पद, तो तिंगंत पदों में है भाव प्रधानम, भाव प्रधान होता है, व्यापार प्रधान होता है। और नाम पद में क्या होता है? नाम पद का मतलब समझा आपने, नाम माने प्रातिपदिक, प्रातिपदिक संज्ञा होती है ना, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम अथवा कृत्तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो उस प्रातिपदिक को ही नाम बोला जाता है। तो नाम जब जहाँ हो, प्रातिपदिक जहाँ हो, वहाँ पर कौन प्रधान होता है, तो निरुक्तकार यास्क लिखते हैं कि सत्व प्रधान आनी, कि माने नाम में प्रातिपदिक में सत्व प्रधान होता है। ये सत्व क्या है, तो सत्व मतलब होता है द्रव्य। तो जहाँ प्रात, जैसे मान लीजिए राम प्रातिपदिक है, तो राम प्रातिपदिक में बहुत सारी बातें हैं, पुल्लिंग है वहाँ पर, एक वचन है वहाँ पर, कर्ता अर्थ है, हैं, और राम नाम का व्यक्ति है। व्यक्ति वहाँ देवता ले लीजिए या किसी मनुष्य को ले लीजिए, तो इसमें जो मनुष्य जो है वही है द्रव्य, ठीक है। तो राम कहने से उस व्यक्ति का बोध होगा, उस द्रव्य का बोध होगा, व्यक्ति रूपी द्रव्य का बोध होगा, वही व्यक्ति रूपी द्रव्य जो है प्रधान होगा, बाकी जो लिंग है, कारक है, संख्या है, ये सब अप्रधान होगा। तो इस तरह से निरुक्तकार ने कहा कि तिङन्त स्थल में भाव प्रधान होता है, माने व्यापार प्रधान होता है, और प्रातिपदिक स्थल में सत्व प्रधान होता है, माने द्रव्य प्रधान होता है। तो यहाँ पर निरुक्तकार ने स्पष्ट रूप से बताया है कि शाब्द बोध कैसा हो, तो व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध हो, क्योंकि भाव प्रधान आख्यातम बोला इन्होंने, भाव माने व्यापार, तो व्यापार प्रधान आख्यातम। तो इस तरह से यह एक प्रमाण हुआ, कौन, निरुक्तकार का ये प्रमाण है। इसकी पंक्ति है भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। इस निरुक्तकार के वचन के आधार पर वैयाकरण लोग व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं, ठीक है। एक प्रमाण बताया गया, लेकिन यह जो प्रमाण है यह व्याकरण से भिन्न शास्त्र का प्रमाण हुआ। व्याकरण का तो प्रमाण हुआ नहीं, इसलिए दूसरा प्रमाण भी देते हैं जो व्याकरण शास्त्रीय प्रमाण है। वो कहते हैं कि भूवादि सूत्रादिष्ठ क्रिया प्राधान्य बोधक भाष्याच्च। भाष्य आपने पढ़ा भी होगा, महाभाष्य जो है वो सबसे बड़ा व्याकरण में प्रमाण माना जाता है। कहा भी जाता है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यथा उत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। तीन मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इसमें उत्तरोत्तर मुनि जो हैं, बाद बाद वाले जो मुनि हैं, उनकी प्रामाणिकता अधिक मानी गई है। वो क्यों मानी गई है, वो सब बात हम परिभाषेन्दु शेखर में पढ़ेंगे। तो महाभाष्य में भूवादयो धातवः, इस सूत्र के अंतर्गत जो व्याख्यान किया गया है, और भूवादि सूत्र आदि, आदि भी ले लिया तो एक और सूत्र ले लीजिए, प्रशंसायाम रूपप। तो भूवादयो धातवः प्रशंसायाम रूपप इत्यादि सूत्र के महाभाष्य में क्रिया प्राधान्य बोधक बात की गई है। माने ऐसा व्याख्यान किया गया है कि क्रिया का प्राधान्य होता है, अर्थात क्रिया ही प्रधान होती है। क्रिया याद कीजिए, क्रिया मतलब भी वही भावना, व्यापार, क्रिया, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। तो यह जो है व्याकरण शास्त्रीय प्रमाण हो गया, क्या कि महाभाष्य में भूवादयो धातवः प्रशंसायाम रूपप इत्यादि सूत्रों के व्याख्यान में क्रिया की प्रधानता बताई गई है, व्यापार की प्रधानता बताई गई है। अतः धात्वर्थ भावना प्राधान्यम अध्यवसीयते, इसलिए धातु का अर्थ जो भावना है, व्यापार है, उसका प्राधान्य, उसकी प्राधान्यता जो है अध्यवसीयते माने निश्चीयते। व्याकरणों ने महाभाष्य के प्रमाण के आधार पर और निरुक्त के प्रमाण के आधार पर ये अध्यवसाय किया, ये निश्चय किया कि धात्वर्थ भावना ही शाब्द बोध में मुख्य विशेष बनता है। तो इस तरह से व्याकरणों ने अपने पक्ष में दो प्रमाण प्रस्तुत किए, एक निरुक्तकार का प्रमाण प्रस्तुत किया और एक जो है महाभाष्य का प्रमाण प्रस्तुत किया। अब जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि शाब्द बोध में मुख्य विशेष्य कौन होता है, इस संबंध में न्यायिकों के साथ जो है व्याकरणों का विरोध है। न्यायिकों का कहना है कि शाब्द बोध में मुख्य विशेष्य प्रथमांतार्थ होता है। तो अब उस बात का खंडन जो है यहाँ पर किया जाएगा, तो आज के रिकॉर्डिंग में जितना हो पाता है उतना हम कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ग्रंथ में है कि अपिचा आख्यातार्थ प्राधान्य, आख्यात का अर्थ यहाँ पर तिंग लेंगे। ऐसा है कि ये आख्यात शब्द जो है ना, कहीं पर तिंगंत अर्थ को बताता है, कहीं पर तिंग अर्थ को बताता है। तो प्रसंग के अनुसार जो है हम आख्यात का अर्थ लेते हैं। जैसे इससे पहले जो निरुक्तकार का वचन था भाव प्रधान आख्यातम, वहाँ पर आख्यात का अर्थ हमने जो है तिंगंतम किया था, तिंगंत लिया था। किंतु यहाँ जब हम बात कर रहे हैं आख्यातार्थ प्राधान्य वाली पंक्ति पर, तो यहाँ पर आख्यात का अर्थ हम तिंग लेंगे। तो आख्यात अर्थ, तिंग का अर्थ क्या होता है? कर्ता कर्म होता है। तो तस्य प्राधान्य, आख्यात अर्थ की अगर प्रधानता होगी तो क्या होगा? तस्य देवदत्तादिभिः समम् अभेदान्वयात्। ऐसा है कि जैसे देवदत्ता तंडुलम पचति में, पचति में ती का अर्थ हो गया कर्ता, और देवदत्ता जो है उसका अर्थ हो गया देवदत्त। तो ती जो है एक ही व्यक्ति, जिस व्यक्ति को बताएगा, ती का अर्थ कर्ता होता है ना, तो वो किसको बताएगा? कर्ता को बताएगा, वो जो कोई व्यक्ति है। और देवदत्ता भी उसी कर्ता को बताता है। तो जब समान अर्थ को बताता है तो वहाँ पर अभेदान्वय होता है। अभेदान्वय की बात मैंने की थी कि अन्वय दो, अन्वय मतलब पदार्थ का परस्पर संबंध, वह दो प्रकार का होता है, अभेदान्वय और भेदान्वय। जब भिन्न भिन्न अर्थ हो तो भेदान्वय होता है, और अभिन्न अर्थ हो माने समान अर्थ हो तो अभेदान्वय होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आख्यातार्थ को हम प्रधान नहीं मान सकते, अर्थात प्रथमांतार्थ को हम प्रधान नहीं मान सकते, क्योंकि देवदत्त आदि के साथ जो है आख्यातार्थ का अभेदान्वय होता है। देवदत्तादि भी सह समम अभेदान्वयात्, प्रथमांतार्थस्य प्राधान्यापत्ति ही। और इस तरह से अभेदान्वय होने के कारण क्या होगा? प्रथमांतार्थ की प्रधानता की आपत्ति होगी, माने प्रथमांतार्थ जो है प्रधान होने लगेगा। ये इसलिए कह रहे हैं कि इसका खंडन करना, तो उस खंडन करने के लिए अपनी बात को जो है ना रखी जाती है, वही रख रहे हैं कि आख्यातार्थ का अगर प्राधान्य मानेंगे, माने कर्ता अर्थ को अगर हम प्रधान मानेंगे, तो क्या होगा कि देवदत्त आदि के साथ जो है उसका अभेदान्वय होगा, माने कर्ता अर्थ का अभेदान्वय होगा, और फिर प्रथमांतार्थ की जो है प्रधानता होने लगेगी। तथा च अगर प्रथमांतार्थ की प्रधानता होने लगेगी तो क्या दोष होगा? इस दोष की चर्चा हम आगे के पाठ में करेंगे। आज का पाठ यहीं रखते हैं।